Can a preacher be a non-Christian and cast out demons and perform miracles?
क्या कोई प्रचारक अविश्वासी हो सकता है और प्रचार कर सकता है और दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है? क्या ऐसा संभव है?
How?
कैसे संभव हो सकता है? Like Judas was, Judas's character was.
Like Judas, yes. Any other answer?
कोई और उत्तर? Shimon, Simon the magician.
But he wasn't doing that in Jesus' name.
लेकिन वो यीशु मसीह के नाम में नहीं कर रहा था वो.
Can the devil counterfeit miracles?
क्या शैतान नकली फर्जी आशकर्म कर सकता है?
Could a non-Christian preacher experience temporary power in the name of Jesus?
क्या एक गैर विश्वासी प्रचारक यीशु मसीह के नाम में अस्थाई सामर्थ का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, हाँ कर सकता है.
You think about that some more, and after lunch, we'll discuss it some more.
अच्छा, आप लोग सोचते रहिए उसके बारे में और खाने के बाद हम बात करेंगे उसके बारे में. नहीं, अभी सोचिएगा नहीं, मतलब अभी तो सुनिएगा जो कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रख, बात करेंगे उसके बारे में आगे चल के.
We're talking about the Christian's relationship to the law.
हम बात करें, जिस विषय पे हम बात करें वो है एक मसीह का व्यवस्था से संबंध.
And by the law, we don't just mean the Ten Commandments.
और जब हम व्यवस्था की बात करें तो हम केवल दस आज्ञाओं की बात नहीं कर रहे हैं.
We mean all the commandments of the New Testament that the apostles teach.
तो हम बात कर रहे हैं नए नियम में वे सारी आज्ञाएं जो प्रेरित लोग सिखाते हैं.
The antinomian says this.
और जो एक गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति है, वादी है, वो ये कहता है.
The law and the commandments are not a guide for the Christian's life.
वो कहता है कि व्यवस्था और आज्ञाएं एक मसीही के जीवन के लिए मार्ग नहीं दिखाती हैं, दिशा दिखाती नहीं है.
He is led by the Spirit. He's not led by the law.
वो कहते हैं कि वो सिर्फ आत्मा के द्वारा चलाया जाता है और व्यवस्था के द्वारा नहीं दिशा निर्देशित किया जाता है.
Look in the book of Romans.
और रोमियो की पत्री में देख लीजिए.
And chapter 7.
और सातवें अध्याय में. रोमियो से सातवें अध्याय.
And verse 4.
और उसके चौथा पद.
Therefore, my brethren, you were made to die to the law through the body of Christ.
इसलिए मेरे भाइयों, तुम मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के प्रति मृतक बना दिए गए थे.
Verse 7.
सातवां पद.
I mean verse 6.
छठा पद.
But now you have been released from the law.
परंतु अब जिस व्यवस्था से हम बंधे हुए थे, उसके प्रति हम मर करके मुक्त कर दिए गए.
So you serve in newness of the Spirit, not oldness of the letter.
तो इसलिए पवित्र आत्मा की नई विधि सेवा करते हैं, ना कि हम लेख की पुरानी विधियों के अनुसार.
We're not to serve according to law and commandment.
हमें व्यवस्था और आज्ञाओं के अनुसार सेवा नहीं करनी है.
We're to serve according to the Spirit and according to love.
लेकिन हमें आत्मा के अनुसार और प्रेम के अनुसार सेवा करनी है.
Look in the book of Galatians.
और गलती की पत्री में देख लीजिए.
Chapter 5.
और पांचवा अध्याय उसका.
And verse 18.
उसका 18 पद.
You are led by the Spirit, you are not under the law.
तुम पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाते हो, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे.
And he teaches this.
और वो ये सिखाता है यहाँ पे.
Now we're led by the Spirit.
अब हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं.
We're not under the law.
हम व्यवस्था के अधीन नहीं.
The law has no influence in our life.
और व्यवस्था का हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं है.
The commandments have no control over us.
जो आज्ञाएं हैं, उनका हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है.
Our obedience is not to look to the law, it's to look to Christ.
तो जो हमारी आज्ञा कारिकता है वो इसलिए नहीं है ताकि हम व्यवस्था की ओर देखें, किंतु मसीह की ओर देखने के लिए.
We are to be directed by the Spirit, not according to commandment.
हमें आत्मा के द्वारा चलाया जाना है बजाय की आज्ञाओं के द्वारा चलाया जाना है.
Now is that true?
क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है?
The antinomian fails to make a difference between the law of God in justification and in sanctification.
जो गैर व्यवस्थावाद रखती है वो इस बात में असफल हो जाता है कि परमेश्वर का व्यवस्था का हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने और पवित्रीकरण में क्या इस्तेमाल आता है उन दोनों चीजों में भिन्नता करने में वो असफल रहता है.
They say when Paul says we have died to the law, that means not just justification but also sanctification.
जब पौलुस कहता है कि हम व्यवस्था के लिए मर गए तो ना सिर्फ धर्मी ठहरा दिए जाने के लिए लेकिन पवित्र करने के लिए भी.
We should have no relationship to commandments.
और that's what the antinomian says.
Yes.
तो जो गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति है वो ये कहता है कि हमारा अब व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं, आज्ञा से कुछ लेना देना नहीं है.
We're led by the Spirit.
क्योंकि अब हम सिर्फ आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, ऐसा गैर व्यवस्थावाद
व्यक्ति कहता है. We don't have to spend our time looking at commandments.
तो कहता है कि हमें आज्ञाओं को देखने की कोई जरूरत नहीं है.
We just love Jesus and follow the Spirit.
हम सब यीशु मसीह से प्रेम करें और आत्मा के पीछे पीछे चलें.
Is that right?
क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हमें सिर्फ यीशु से प्रेम करना है, आत्मा का चलना है और व्यवस्था की चिंता नहीं करनी. हाँ, अभी खाना नहीं खाया.
Why is it not right?
अच्छा क्यों नहीं सही है अगर सही नहीं है ये बात तो? ठीक है.
Translate this for me verbally, brother. Gospel obedience.
सुसमाचारी आज्ञाकारिता. अंग्रेजी में अंकल लिख रहे हैं यहाँ पे सुसमाचारी आज्ञाकारिता. ठीक है, पास्टर एंडी यहाँ पे लिखे गॉस्पल ओबीडियंस. अंग्रेजी में हिंदी में सुसमाचारी आज्ञाकारिता.
I'll write it in English, you write it in Hindi.
हम आपको वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं. अगर आपको अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में लिखिए, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती तो मत लिखिए अंग्रेजी में, हिंदी में लिखिए. मैं आपको बताता जा रहा हूँ. ठीक है, पहली लाइन है सुसमाचारी आज्ञाकारिता या सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता.
What is gospel obedience?
क्या है सुसमाचार्य आज्ञाकारिता, सुसमाचार से संबंधित या सुसमाचार की आज्ञाकारिता क्या है?
It is obedience that comes out of the gospel.
ये एक ऐसी आज्ञाकारिता है जो सुसमाचार से होकर के निकलती है.
It is obedience that comes out of a new heart.
ये एक ऐसी आज्ञाकारिता है जो नए हृदय में से होकर के निकलती है.
It is obedience that comes from the Holy Spirit.
ये एक ऐसी आज्ञाकारिता है जो पवित्र आत्मा से होकर के निकलती है.
It is obedience that is rooted in our union with Jesus Christ.
ये एक ऐसी आज्ञाकारिता है जो हमारे मसीह के साथ एक मिलन हो गया है, उसमें जड़ पाती है.
What are the different ingredients or parts of gospel obedience?
Of सुसमाचारी आज्ञाकारिता के विभिन्न हिस्से या भाग क्या हैं?
Now this is in contrast to legal obedience.
और ये जो है कानूनी जो आज्ञाकारिता है उसके विपरीत में पाई जाती है.
There is an obedience according to law, there's an obedience according to the gospel.
दो तरह के आज्ञाकारिता, एक है सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता और दूसरा है व्यवस्था या कानून पर आधारित आज्ञाकारिता.
Let's mention several of these.
आइए हम इनमें से कुछ बातें बताएंगे आपको.
The basis or the grounds.
आज्ञाकारिता का आधार.
Or the source.
आज्ञाकारिता आधार या कारण या सूत्र. आज्ञाकारिता का सुसमाचार या आज्ञाकारिता का आधार कारण या सूत्र.
Where does it come from?
कहां से आती है यह आज्ञाकारिता?
Union with Christ.
मसीह से एकता के कारण, मसीह से मिलन के कारण, मसीह से एकता कारण. तो क्या है सुसमाचारी आज्ञाकारिता का कारण या सूत्र या कारण? कहां से आती है ये, किसकी वजह से होती है? मसीह से एकता के कारण, मसीह से मिलन के कारण.
What does it mean to be united to Christ?
मसीह से मिल जाना, जुड़ जाना, एक हो जाने का मतलब क्या है?
The last time we were here, we talked about union with Christ.
जब पिछली बार मैं यहाँ पे था, तो हमने बात किया था मसीह से मिलन या एकता के बारे में बात किया
था. One of the most important truths in the New Testament.
एक नए नियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है ये.
Paul and John and Peter mention union with Christ almost 150 to 200 times.
पौलुस, यूहन्ना और पत्रस ने नए नियम में यीशु मसीह से एकता मिलन के समावेश के बारे में लगभग 100 to 150 बारे में बात किया है.
And we are united to Christ in two ways.
और हम यीशु मसीह से हमारा मिलन या एकता दो तरीके से हो गया है.
Do you remember what those two ways were?
क्या आपको याद है वो कौन से दो तरीके हैं जिनसे हमारा यीशु मसीह से मिलन हो गया, एकता हो गई है?
We united to Christ legally.
हम यीशु मसीह से कानूनी तौर पे, वैधानिक तौर पे, वैधानिक या कानूनी तौर पे हम जुड़ गए हैं.
And we united to Christ spiritually.
और हम यीशु मसीह से आत्मिक तौर पे जुड़ गए हैं, वैधानिक या कानूनी तौर पे या व्यवस्था के अनुसार, और दूसरी तरह से हम आत्मिक तौर पे.
We're united to Christ here by representation.
हम यहाँ पे वैधानिक तौर पे हम यीशु मसीह से प्रतिनिधित्व होने के कारण हम उससे जुड़ गए हैं. वो हमारा प्रतिनिधि है प्रतिनिधित्व के द्वारा.
And we're united to Christ here by regeneration.
और यहाँ आत्मिक तौर पे हमारा यीशु मसीह से मिलन हो गया है नए बना दिए जाने के द्वारा, नए जन्म के द्वारा, नई सृष्टि के द्वारा.
We united to Christ legally by representation.
हमारा यीशु मसीह से मिलन हो गया है वैधानिक या कानूनी तौर पे, क्योंकि वह हमारा प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि होने के द्वारा, प्रतिनिधित्व के द्वारा.
And we receive benefits from Christ in two ways.
और उस कानूनी प्रतिनिधित्व होने की वजह से और उसे मिलन होने की वजह से हमें दो फायदे मिलते हैं.
You don't have this word, brother.
No, but I can explain it.
By imputation, legal transfer.
और कानूनी वैधानिक स्थानांतरण के द्वारा एक दूसरे जो मेरा नहीं है वो हमको दे दिया गया है.
Over here, there's actual impartation.
लेकिन यहाँ पे वास्तविक तौर से हमको दे दिया गया. वहां पे मेरे बदले में कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे वास्तविक तौर से मुझे दे दिया गया.
This is a change in our legal status.
तो
legal state.
हमारे बदले में यीशु मसीह ने जो दे दिया है वो एक हमारा कानूनी वैधानिक हमारा स्थान है परमेश्वर के सामने, हमारी ये स्थिति है.
This is a change in our actual nature.
और ये जो ये है हमारा, हम वास्तविक तौर से हमारा ये व्यवहार हो गया है.
This results in our justification.
वो हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने में उत्पन्न होता है. Can you put those things in bracket here? The thing that Jesus once said about imputation and impartation.
Yeah, what do you mean bracket?
Just below this, in two brackets.
Under here?
Yeah.
And say and what?
I'll put these things in Hindi later on.
Okay.
So you said you explained imputation and impartation.
Yes. Yeah, I'm finished. This results in our justification. No, I'm going another one here. Legal, representative, imputation, justification. This results in our sanctification.
और जो हमको प्रदान कर दिया जाता है उसकी वजह से हमारा शुद्धिकरण होता है.
This produces assurance.
हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने की वजह से हमें निश्चयता प्राप्त होती है.
This produces perseverance.
और इसकी वजह से हम धैर्य के साथ मसीह दौड़ में बने रहते हैं. धैर्य के साथ मसीह दौड़ में, शुद्धिकरण जब होता है उसकी वजह से हम धैर्य के साथ मसीह दौड़ में बने रहते हैं.
Now, does anyone remember this little chart?
क्या आप में से कोई इस छोटे सूची को याद है? आप में से किसी को?
No one.
किसी को याद है? किसी को याद है? थोड़ा सा याद है, हल्का सा याद है, हाँ? तो हाथ उठाइए ना भैया.
Union with Christ.
मसीह के साथ एकता.
We are in Christ.
हम मसीह में हैं.
Christ is in us.
मसीह हम में है.
We are joined to Christ.
हम मसीह से जुड़ गए हैं.
Like a body to the head.
एक ऐसा एक देह शरीर से जैसे जुड़ा होता है.
Like the bride to the husband.
एक दुल्हन अपने पति से जुड़ी होती है.
Like the branch to the vine.
झाड़ियां अपने टहनियां जैसे पौधे से जुड़ी होती
है. And we're united to Christ in two ways.
और हम मसीह से दो तरीके से जुड़ जाते हैं.
Legally and spiritually.
कानूनी या वैधानिक तौर पे और आत्मिक तौर पे.
We were united to Christ in eternity past.
हम मसीह से अनंत काल पूर्व में उससे जुड़ गए थे.
He chose us in Christ.
क्योंकि परमेश्वर ने हमको मसीह में होकर के अनंत काल पूर्व में चुन लिया था.
He was our legal representative.
वो हमारा वैधानिक कानूनी प्रतिनिधि था.
When Christ lived and died and rose again, we were united to Him.
जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तब हम उससे जोड़ दिए गए, हमारा उससे मिलन हो गया.
By legal representation.
कानूनी प्रतिनिधि के द्वारा, प्रतिनिधित्व के द्वारा.
When we believe,
जब हमने विश्वास किया,
we are united to Christ.
हम यीशु मसीह से जुड़ गए.
By spiritual impartation,
यहाँ पे आत्मिक प्रदान कर दिए जाने के द्वारा.
And when we die, we will be perfectly united to Christ in glory.
और जब हम मर जाएंगे, तो भविष्य में एकदम हम निश्चित तौर पे संपूर्णता के साथ परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाएंगे महिमा में.
So when we talk about gospel obedience, where does it come from?
तो जब हम सुसमाचारीय आज्ञाकारिता की बात करते हैं, तो कहाँ से आती है सुसमाचारीय आज्ञाकारिता?
Our union with Christ.
वो हमारे यीशु मसीह के साथ एकता मिलन के द्वारा ही आती है.
You are united to Christ.
आप यीशु मसीह के साथ जुड़ गए.
You are in Christ before the foundation of the world.
इस संसार की बुनियाद से पहले आप यीशु मसीह में थे.
You were in Christ when he died and rose from the grave.
आप यीशु मसीह में थे जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और भूमि में से जी उठे.
You are united to Christ when you believed.
और आप यीशु मसीह से एक हो गए, मिलन हो गए जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया.
And you will be perfectly joined to Christ in glory.
और महिमा में, भविष्य में आप यीशु मसीह के साथ संपूर्णता के साथ, सिद्धता के साथ जुड़ जाएंगे.
So when we talk about gospel obedience, where does it begin?
तो जब हम सुसमाचारीय आज्ञाकारिता के बारे में बात करते हैं, तो उसका आरंभ कहां होता है?
With Christ.
उसका आरंभ होता है मसीह के साथ एकता के साथ.
Any questions?
कोई प्रश्न है आपको?
Now, we talked about that last time.
पिछली बार मैंने इसके बारे में बात किया था आपसे.
A very important subject.
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये.
Any questions?
कोई प्रश्न है इसके बारे में कि क्या है हमारा कारण, या क्या है, किस वजह से हम सुसमाचारीय आज्ञाकारिता कर पाते हैं?
नंबर टू,
दूसरी बात.
हाउ कैन वी से दिस? हाउ डज गॉस्पल ओबीडियंस बिगिन?
सुसमाचारीय आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आरंभ कैसे होती है?
हाउ इज इट इनिशिएटेड? हाउ इज इट स्टार्ट?
उसका प्रारंभ कहां से होता है? उसको शुरुआत कौन करता है?
इट्स
दूसरी बात, कहां से शुरू होती है, आरंभ कहां से होता है सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता? ऐसी आज्ञाकारिता जो सुसमाचार के द्वारा प्रेरित होती है, वो हमारे जीवन में कहां से आरंभ होती है, शुरुआत कहां से होती है?
You got a word for initiated, begin, starts. Initiated by faith.
इसका प्रारंभ होता है, इसका आरंभ होता है, इसका शुरुआत होता है विश्वास के द्वारा. विश्वास के द्वारा.
What do we mean?
हमारा कहने का क्या मतलब है? विश्वास के द्वारा इसका आरंभ होता है. आरंभ होता है विश्वास के द्वारा.
नॉट बाय फीलिंग,
भावनाओं के द्वारा नहीं.
नॉट बाय सर्कमस्टेंस,
स्थितियों के अनुसार नहीं.
नॉट बाय इनवर्ड प्रॉम्प्टिंग,
भीतरी कुछ तीव्रता इच्छा होने के द्वारा नहीं.
सम पीपल टीच दिस,
कुछ लोग ये सिखाते हैं.
Well, if you want to obey, you have to wait for the Spirit to move you.
कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर तुम आज्ञा का पालन करना चाहते हो, तो तुम्हें आत्मा का इंतजार करना पड़ेगा कि आत्मा तुमसे कहे कि आज्ञा पालन करो.
And if the Spirit doesn't move you, you can't do anything.
क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर आत्मा काम नहीं करेगा, जब तक काम नहीं करेगा, तो तुम कुछ कर नहीं सकते.
If you want to pray, you have to wait for the feeling to pray.
तो इसलिए तुम प्रार्थना करना चाहते हो, तो तुम्हें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक तुम्हारे अंदर भावना, इच्छा ना हो प्रार्थना करने के लिए.
If you want going to wait to read your Bible, you must wait for a desire to read your Bible.
Oh, इसीलिए अगर तुम बाइबल पढ़ना चाहते हो तुम्हें तब तक रुकना है जब तक तुम्हारे अंदर अंदर से इच्छा ना आ जाए बाइबल पढ़ने के लिए.
If you want to get up out of bed in the morning, you've got to wait for the angels to come and pick you up and take you out of bed.
Oh, इसलिए अगर सुबह तुम अपने बिस्तर से निकल करके बाइबल पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्गदूतों का इंतजार करना पड़ेगा और वो आएंगे तुमको तुम्हारे बिस्तर से निकाल करके फिर तुमको बाइबल पढ़ने में मदद करेंगे.
But what does Paul say?
लेकिन पौलुस क्या कहता है इस बारे में?
Gospel obedience begins in faith.
सुसमाचार ये आगे कार्यकता विश्वास में आरंभ होती है.
Not by feeling.
भावनाओं पर आधारित नहीं होती सुसमाचार ये आगे कार्यकता.
Not by inward emotion.
भीतरी भावनाओं पर आधारित नहीं होती है.
Not according to your circumstances.
आपके स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार पर नहीं होती है.
But according to faith.
लेकिन ये विश्वास पर आधारित होती है.
Galatians chapter 5.
और गलातियों का पांचवा अध्याय.
Verse 5.
पांचवा पद.
Through the Spirit, by faith, awaiting for the hope and righteousness.
क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं जिसकी हमें आशा है.
Now the antinomian says this.
और जो गैर व्यवस्थावाद या व्यवस्था के विरोध में कानून के नियमों के विरोध में वो व्यक्ति ये कहता है.
You gotta wait until you feel like praying.
तुम तब तक तुम्हें रुकना होगा रुकना चाहिए जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा ना आ जाए कि तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए.
If you don't have a desire to pray, you don't need to pray.
क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं प्रार्थना करनी तो प्रार्थना मत करो.
If you don't have a desire to read your Bible, don't read the Bible.
अगर तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं बाइबल पढ़ने की तो बाइबल मत पढ़ो.
But the Christian life is by faith.
लेकिन जो विश्वासी जीवन है वो जो मसीह जीवन है वो विश्वास पर आधारित है.
Second Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों.
Chapter 5.
पांचवा अध्याय.
We walk by faith and not by sight.
हम विश्वास के द्वारा चलते हैं ना कि आंखों के द्वारा दर्शन के द्वारा.
We walk by faith, not by feeling.
हम विश्वास के द्वारा चलते हैं ना कि भावनाओं के द्वारा.
We walk by faith, not by emotional impression.
और हम विश्वास के द्वारा चलते हैं ना कि हमारी भावना पे जो हम पे असर डाल रही है उसके ऊपर.
Do you understand what we're saying?
क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपसे?
Faith says this.
विश्वास ये कहता है.
God says that I should read the word.
परमेश्वर कहता है कि मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए.
God says that I should pray.
परमेश्वर मुझसे कहता है कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए.
I don't feel like praying.
और यदि मेरे अंदर इच्छा नहीं होती
I don't feel like reading my Bible.
और मेरे अंदर इच्छा नहीं होती बाइबल पढ़ने की या प्रार्थना करने की.
But no matter how I feel, by faith I will do this.
लेकिन चाहे मेरे अंदर जो भी भावना हो रही हो ना हो रही लेकिन विश्वास के द्वारा मैं उसका वचन पढ़ूंगा प्रार्थना करूंगा.
Every morning when I wake up I'm tired.
और हर एक सुबह जब मैं सुबह उठता हूँ मैं बड़ा थका हुआ होता हूं.
And I don't feel like pray.
और मेरे पढ़ने प्रार्थना करने की मेरे अंदर इच्छा नहीं होती.
If I acted on feeling, I would stay in the bed.
अगर मैं अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य करता तो मैं अपने बिस्तर में पड़ा रहता.
But gospel obedience is according to faith.
लेकिन सुसमाचारी आज्ञाकारिता विश्वास के आधार पर है.
You step out in faith.
तो तुम विश्वास में होकर के अपना कदम
निकालते हो. Your Bible in faith.
अपने विश्वास में होकर के अपना वचन खोलते
हो. You get on your knees by faith.
अपने घुटनों पर विश्वास के द्वारा आते हैं.
You get out of the bed by faith.
अपने बिस्तर से निकलते विश्वास.
Now that's not legal obedience.
ये वैधानिक या कानूनी आज्ञाकारिता नहीं है.
That is gospel obedience.
किंतु ये तो सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता है.
You don't wait for a feeling.
आप भावनाओं के लिए नहीं रुके रहते.
You don't wait for a prompting.
और आप रुके नहीं रहते कि आपको अंदर से कोई कुछ कहकर.
You step out in faith.
लेकिन आप विश्वास में होकर के बाहर निकलते हैं.
No matter how you feel.
चाहे जैसा भी आप महसूस करते हैं.
Many Christians' life is controlled by their feeling.
ज्यादातर विश्वासियों का जो जीवन है उनकी भावनाओं के द्वारा नियंत्रित होता है.
But true obedience begins by faith.
सच्ची आज्ञाकारिता विश्वास के द्वारा आरंभ होती है.
Many times when I step out in faith,
कई बार जब मैं विश्वास में होकर के आगे निकलता
हूं, open my Bible in faith,
अपने वचन को खोलता हूं विश्वास
में होकर के, get on my knees in faith,
अपने घुटनों पे होता हूं
विश्वास में, get out of the bed by faith,
विश्वास में होकर के मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलता हूं,
give myself to the means of grace,
मैं अपने आप को अनुग्रह के साधन को दे देता हूं,
God begins to move my heart,
परमेश्वर मेरे हृदय में काम करने लगता है,
but faith comes first,
लेकिन विश्वास पहले आता है,
then the feelings may follow,
और उसके बाद फिर भावनाएं आती हैं.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं?
We don't live according to feeling.
हम भावनाओं के अनुसार नहीं जीते हैं.
The antinomian says this.
जो गैर व्यवस्थावाद कानूनवाद व्यक्ति वो ये कहता है.
You don't feel like praying, don't pray.
अगर तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होती प्रार्थना करने तो मत पढ़ो प्रार्थना करो कोई बात नहीं.
God loves you anyway.
कोई बात नहीं परमेश्वर फिर भी तुमसे प्यार करता है.
You don't feel like reading your Bible, don't read your Bible.
अगर तुम्हें बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती मत पढ़ो बाइबल कोई बात नहीं.
It won't hurt you.
तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी.
God loves you.
परमेश्वर तुमसे प्रेम करता
है. He accepts you.
वो तुमको स्वीकार करता है.
You can go a whole week and not read your Bible.
और पूरा सप्ताह चला आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ा.
You don't have to pray.
आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है.
God still loves you.
आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं परमेश्वर से प्रेम करता है.
You wait for the Spirit to move you to pray.
आप आत्मा के लिए रुकेंगे कि जब आत्मा आपको चलाएगी प्रार्थना करने के लिए तब आप प्रार्थना करेंगे.
You don't act in faith to commandment.
और आज्ञाओं को पे कार्य करने के लिए आप विश्वास में होकर के काम नहीं करते हैं.
You wait for the Spirit to move you.
लेकिन आप आत्मा के लिए रुकते हैं कि वो आपको चलाए आज्ञाओं पे काम करने के लिए.
If you wait for the Spirit to move you, you'll never get out of bed.
अगर आप आत्मा के लिए रुकेंगे कि वो आपको चलाए प्रार्थना करने के लिए वचन पढ़ने के लिए तो आप कभी अपने बिस्तर से बाहर निकलेंगे ही नहीं.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं.
But number three,
number तीन, तीसरा नंबर, तीसरी बात.
After we step out in faith.
हम विश्वास में हम कदम बढ़ाने के बाद
because of our union with Christ,
क्योंकि हमारा मसीह से एकता हो चुका है.
Gospel obedience is empowered by the Holy Spirit.
सुसमाचारीय आज्ञाकारिता पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाती है. सामर्थ कहां से आती है सुसमाचार आज्ञाकारिता के लिए? कहां से आती है सामर्थ सुसमाचारी आज्ञा के लिए? सुसमाचारीय आज्ञा के लिए सामर्थ कहां से आती है? पवित्र आत्मा के द्वारा. कहां से सामर्थ आती है सुषमाचारीय आज्ञा के लिए? सुषमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता के लिए सामर्थ कहां से आती है? पवित्र आत्मा के द्वारा.
कॉन्ट्रडिक्शन टू दिस.
और जो पवित्र आत्मा और विश्वास की जो मैं बात कर रहा हूं वे दोनों में विरोधाभास नहीं है.
यू स्टेप आउट इन फेथ.
आप विश्वास में होकर के भरोसे में होकर के आप बाहर की ओर निकलते हैं.
अकॉर्डिंग टू गॉड्स कमांड.
परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार आप कदम बढ़ाते हैं.
God will enable you by the Spirit.
और फिर जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको इस योग्य करेगा कार्य करने के लिए.
Galatians chapter 5.
गलतियों फिर से आते कि मेरे साथ पांचवा अध्याय.
नोटिस व्हाट ही सेज एंड वर्स 5.
और यहाँ पे ध्यान देखिए गलतियों का पांचवा अध्याय उसके पांचवे पद में देखिए क्या कहता है.
By the Spirit,
पवित्र आत्मा के द्वारा.
By faith,
हम विश्वास से.
Do you see that combination?
आप देख रहे हैं कि कैसे ये दोनों साथ में चल रहे हैं विश्वास और आत्मा.
We step out in faith,
हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे.
And he enables us by his Spirit.
लेकिन वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सक्षम करेगा.
Now sometimes when I pray, I don't feel any help.
और कभी-कभी मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई मदद मिल रही कि नहीं मिल रही है.
But I ask for God's help and God's strength.
और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की मदद के लिए और उसकी सामर्थ के लिए.
But I still seek to pray.
और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ प्रार्थना करने के लिए.
Because I have faith in God's word.
क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन में विश्वास है भरोसा है.
If I draw near to God, he will draw near to me.
क्योंकि अगर मैं उसके नजदीक जाऊंगा तो वो मेरे नजदीक आएगा.
And often I get up to pray and I say, Lord, I'm dull and flat, but I'm coming near to you.
कभी कभी मैं जगता हूँ मैं कहता हूँ प्रभु जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कमजोरी लग रही है लेकिन फिर भी मैं आपके नजदीक में आऊंगा.
And often God draws near to me.
और जब मैं ऐसा करता हूँ तो अक्सर परमेश्वर मेरे नजदीकी में आता है.
But whether you have any feeling or not, we are to pray in faith.
और चाहे आपके पास कोई भावनाएं हो या ना हो लेकिन हमें विश्वास में होकर के प्रार्थनाओं को करना ही करना है.
The problem with many Christians is they never get beyond being controlled by their feelings.
और दिक्कत क्या होती है कई विश्वासियों के साथ कि वो लोग कभी भी अपनी भावनाओं के द्वारा नियंत्रण के आगे बढ़ ही नहीं पाते. वो लोग हमेशा अपनी भावनाओं नियंत्रण में रहते हैं.
But if you're going to make progress in the Christian life, it is by faith.
लेकिन अगर आपको मसीह जीवन में प्रगति करना है तो वो केवल विश्वास के द्वारा ही हो सकता है.
You get up by faith.
आप विश्वास में होकर के सुबह उठिए.
You open your Bible by faith.
आप विश्वास में होकर के अपने बच्चों को खोलिए.
You begin to pray by faith.
और प्रार्थना में विश्वास में होकर के प्रार्थना करिए.
Sometimes God picks us up and carries us along.
और कभी कभी परमेश्वर हमको उठाता है और अपने साथ लेकर के चलता है.
Sometimes we have no felt help.
और कभी कभी हमको महसूस भी नहीं होता कि परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है.
But we still pray by faith.
लेकिन फिर भी हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं.
It is the Spirit Spirit that empowers our obedience.
ये है पवित्र आत्मा जो हमारी आज्ञाकारिता को सामर्थ्य प्रदान करता
है. And the power comes from our living head, Jesus Christ.
और ये जो सामर्थ्य आती है हमारे जीवित सर प्रभु यीशु मसीह से ही आती है हमारे पास.
And it comes down the channels of the means of grace.
और वो आता है हमारे पास अनुग्रह के साधनों के रास्ते से होकर के हमारे पास आता है.
So when we give ourselves by faith to the means of grace, the Spirit comes.
और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं विश्वास में होकर के अनुग्रह के साधनों में होकर के तो पवित्र आत्मा आता है.
You understand what we're saying?
आप समझे हम क्या कह रहे हैं.
Number four.
चौथी बात.
Motivation.
प्रेरणा. प्रेरणा. सुसमाचारीय आज्ञाकारिता के लिए प्रेरणा. चौथी बात क्या है प्रेरणा. क्या चीज हमको प्रेरित करती है.
What is the motivation of gospel obedience?
क्या चीज हमें प्रेरित करती है सुसमाचारीय आज्ञाकारिता के लिए.
The antinomian says this.
एक जो गैर व्यवस्थावाद है
वो ये कहता है. One motivation.
वो कहता है केवल एक ही प्रेरणा है हमारे
लिए. The love and grace of God.
वो है परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह.
You should not think about any other motivation.
वो कहता है कि तुम्हें किसी और प्रेरणा के बारे में सोचना नहीं चाहिए.
Is that correct?
क्या ये बात सही है.
Is there just one motivation in the Christian life?
क्या मसीह जीवन में केवल एक ही प्रेरणा का कारण है हमारे लिए प्रार्थना और मसीह से प्रेम करने के लिए विश्वास करने के लिए.
Are there multiple motivations in the Christian life?
क्या मसीही जीवन में अनेकों प्रेरणा है.
Certainly the greatest motivation is the love of God revealed in the gospel.
निश्चित तौर पे हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा वो परमेश्वर का प्रेम है जो कि सुसमाचार में हमारे लिए प्रदर्शित किया गया है.
2 Corinthians chapter 5.
दूसरा कुरिन्थियों का पांचवा अध्याय.
Paul says the love of Christ controls us.
और पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें नियंत्रित करता है.
That is our primary motivation.
ये हमारा प्राथमिक प्रेरणा प्राथमिक कारण क्यों हम कर रहे हैं.
Romans chapter 12 verse 1.
रोमियों उसका 12 अध्याय उसका पहला पद.
I urge you by the mercies of God to present your body.
मैं तुमको ये परमेश्वर के दया में होकर के स्मरण दिलाता हूँ कि अपने आप को जीवित करके बलिदान चढ़ा दो.
Look here in Galatians.
गलती में यहाँ पे फिर से देखिए मेरे साथ पांचवा अध्याय.
Where is the word faith? Working through love. Neither is
विश्वास प्रेम में होकर के कार्य करता है. 5:6.
Mm-hmm. Yes. Look at verse 6.
छठा पद को देख लीजिए.
Neither is circumcision, uncircumcision, anything but faith working through love.
मसीह यीशु में ना खतने का कुछ महत्व ना खतना रहित होने का पर केवल विश्वास का जो प्रेम द्वारा होता है.
Our faith is motivated by love.
हमारा जो विश्वास है वो प्रेम के द्वारा ही प्रेरित होता है.
It is empowered by the Holy Spirit.
वो पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य प्रदान किया जाता है.
This is the ingredients of gospel obedience.
सुसमाचारीय आज्ञाकारिता के यही भाग है हिस्से है सामग्री है.
It comes from union with Christ.
ये यीशु मसीह से एकता के द्वारा आता है.
Jesus is alive.
यीशु मसीह जीवित है.
He has a real body.
उसके पास वास्तविक शरीर है.
He's somewhere in a real place.
वो कहीं पे एक वास्तविक स्थान पे है.
There is power in him.
उसके अंदर सामर्थ्य
है. There is righteousness in him.
उसके अंदर धार्मिकता है.
There is grace in him.
उसके अंदर अनुग्रह है.
And it comes from him to us.
और उससे हमारे पास ये अनुग्रह और सामर्थ्य आती
है. By the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा.
Through the means of grace.
और अनुग्रह के साधनों के द्वारा.
And he gives us power to obey.
और वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम आगे कार्यता करें.
Gospel obedience comes from Christ,
मसीह में एकता के द्वारा
begins by faith,
और विश्वास द्वारा पाया जाता है,
empowered by the Spirit,
पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य प्रदान किया जाता है,
motivated primarily by love,
लेकिन प्राथमिक तौर पर हमारी प्रेरणा का कारण होता है परमेश्वर का प्रेम.
But there are other motivations in the Christian life,
लेकिन मसीह जीवन में और भी कई प्रेरणा के कारण होते हैं.
We'll talk about that later.
और उनके बारे में हो सकता है बाद में बात करेंगे.
This is the main motivation.
लेकिन ये है मुख्य प्राथमिक प्रेरणा का कारण.
The antinomian says this.
और लेकिन जो गैर व्यवस्थावाद है कि वो ये कहता है.
This is the only motivation.
वो कहता है केवल यही सिर्फ एकमात्र प्रेरणा का कारण है.
Number 5.
पांचवी बात.
It is directed or guided by law.
सुसमाचार ये आगे कारिकता को निर्देश दिया जाता है, दिशा दिखाई जाती है, किसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा. सुसमाचार ये आगे कारिकता दिशा पाती है या निर्देश पाती है या रास्ता दिखती है, ठीक है, निर्देशन पाती है किसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, आज्ञा के द्वारा. सुसमाचार ये आज्ञाकारिकता निर्देश पाती है या दिशा पाती है या राह पाती है किसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा.
Antinomian says this.
जो गैर व्यवस्थावाद या गैर कानूनवाद लोग हैं वो लोग ये कहते हैं.
It's not directed by commandments.
वो आज्ञाओं से इसका कुछ लेना देना नहीं है.
It's directed by the Holy Spirit.
वो सिर्फ पवित्र आत्मा से निर्देशित होती है.
You don't have to be concerned about the commandments.
तुम्हें आज्ञाओं की चिंता नहीं करनी है.
You're free from the commandments.
क्योंकि तुम तो आज्ञाओं से मुक्त हो गए हो.
You just love God.
तुम सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करो.
And the Spirit will prompt you in the way to go.
और पवित्र आत्मा तुमको सिर्फ बताएगा कि किस रास्ते पे तुम्हें चलना चाहिए.
There's only one law.
और केवल एक ही व्यवस्था है,
नियम. That's the law of Christ.
वो है मसीह की व्यवस्था.
The antinomian says there's one law.
और जो गैर व्यवस्थावादी व्यक्ति वो कहते हैं सिर्फ एक ही व्यवस्था.
That's the law of Christ.
वो है मसीह की व्यवस्था.
And what is that law?
और वो व्यवस्था क्या है?
Love one another as I have loved you.
एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है.
And if you love, you will fulfill all the other law.
अगर तुम प्रेम करोगे तो तुम सारे बाकी व्यवस्था को पूरा कर दोगे.
Certainly that is true.
और वास्तविक रीति से ये बात सही भी है एक तरह से.
But God doesn't just give us one command in the New Testament.
लेकिन परमेश्वर हमको नए नियम में केवल एक ही आज्ञा नहीं देता है.
He doesn't just say love one another.
वो सिर्फ यही नहीं कहता कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो.
This is a big book.
ये एक बड़ी पुस्तक है.
And there are a lot of commands in the New Testament.
और नए नियम में बहुत सारी आज्ञाएं हैं हमारे आपके लिए.
If God said only one command, it'd be a little book.
अगर परमेश्वर केवल हमको एक ही आज्ञा देता तो ये एक छोटी सी पुस्तक होती.
Christ died for you.
यीशु मसीह आपके लिए मर गया.
Love one another.
एक दूसरे से प्रेम करो.
That's the whole Bible.
वो खत्म होगी पूरी बाइबल.
But that's not what the whole Bible says.
लेकिन पूरी बाइबल सिर्फ यही बात नहीं कहती है.
The Bible tells us specifically how to love one another.
लेकिन बाइबल हमको बताती है कैसे हमें एक दूसरे से विशेष तौर पे प्रेम करना है.
And it gives us specific commandments in every area of life.
और हम मसीह जीवन के अनेक अलग अलग क्षेत्रों में हमें स्पष्ट आज्ञाएं देती है हमें कैसे प्रेम करना है एक दूसरे से.
Christ is the new lawgiver.
मसीह यीशु मसीह एक नया व्यवस्था का देने वाला है.
We don't obey in order to be saved.
हम इसलिए नहीं आज्ञा पालन करते हैं ताकि हम बच जाएं.
We obey because we already are saved.
हम इसलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि हम बच चुके हैं.
And what is the goal?
और सुसमाचारीय आज्ञाकारिता का लक्ष्य क्या है? सुसमाचारीय आज्ञाकारिता का लक्ष्य क्या है? क्या पाना चाह रहे हैं? क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है?
Of gospel obedience.
सुसमाचारीय आज्ञाकारिता का लक्ष्य क्या है?
To glorify and please God.
सुसमाचारीय आज्ञाकारिता का लक्ष्य ये है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसको प्रसन्न करें. सुसमाचारीय आज्ञाकारिता का लक्ष्य ये है कि हम परमेश्वर को महिमा दें और उसको हम प्रसन्न करें. परमेश्वर को महिमा दें और उसको प्रसन्न करें. Glorify and please God.
The antinomian says God is already pleased.
लेकिन जो गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति वो तो कहता है परमेश्वर तो प्रसन्न हो ही चुका है हमसे.
No matter what you do, he's pleased with you.
चाहे तुम जो भी करोगे वो तुमसे फिर भी प्रसन्न है.
You don't have to worry about pleasing God.
इसलिए तुम्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने की चिंता नहीं करनी.
He's always happy with you.
क्योंकि वो तुमसे हमेशा खुश है.
No matter how you live.
चाहे तुम जैसा भी जीवन.
No matter what you do.
चाहे तुम जो भी करो.
He loves you, so he's pleased with you.
वो तुमसे प्रेम करता है इसलिए वो तुमसे प्रसन्न है.
That's not right thinking.
लेकिन ये सही सोच नहीं है.
Certainly he loves us.
ये बात सही कि वो हमसे प्रेम करता है.
And that should motivate us.
और इसलिए वो हमको प्रेरित करना चाहिए.
But it motivates us to please our heavenly Father.
लेकिन हमें किस चीज की प्रेरणा करता है? इस चीज की प्रेरणा करता है कि अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न कर सकें.
Write these verses down.
इन पदों को लिख लीजिए आप.
2 Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों.
Chapter 5.
पांचवा अध्याय.
And verse 9.
और नौवां पद.
What is our ambition? What is our goal?
हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है?
Chapter 5, verse 9.
पांचवा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों पांचवा अध्याय, उसका नवा पद. हमारा महत्वाकांक्षा क्या है?
We have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him.
ये हमारी अभिलाषा, उद्देश्य, इच्छा है कि चाहे हम साथ में रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते रहें.
That is our goal.
ये है हमारा लक्ष्य.
to please God.
कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें.
Not just to be accepted by God.
सिर्फ इतना ही नहीं कि हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण हो जाएं.
But to be pleasing to God.
लेकिन हम परमेश्वर के सामने उसको प्रिय जाने.
We know God loves us.
हम तो ये जानते हैं पहले से कि परमेश्वर से प्रेम करता है.
He forgives us.
और उसने हमको अपने अनुग्रह में क्षमा किया है.
He pardons all of our sin.
और हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है वो.
And we love him because he first loved us.
और हम उसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले होकर के हमसे प्रेम किया है.
And because we know he loves us, we want to please him.
और क्योंकि हम जानते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं.
Not to earn our salvation.
हम अपना उद्धार पाने के लिए उसको प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं.
But to please our heavenly Father.
लेकिन अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं.
Look in the book of Ephesians.
Ephesians की पत्री में देख लीजिए.
Chapter 5.
पांचवा अध्याय.
Verse 8.
आठवां पद.
You were formerly darkness, now you're light in the Lord.
पहले तुम अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो.
Walk as children of light.
इसलिए ज्योति के संतान के सदृश चलो.
Verse 10.
दसवां पद.
Trying to learn what is pleasing to the Lord.
परखो कि किन बातों से प्रभु प्रसन्न होता है.
We are to walk with the motivation or the goal to please our heavenly Father.
हमारे चलने का प्रेरणा या उद्देश्य है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न कर सकें.
Colossians chapter 1.
कुलुसियों का पहला अध्याय.
Verse 10.
उसका दसवां पद.
Look at verse 10.
पहला अध्याय से दसवां पद.
We are to walk in a manner worthy of the Lord.
तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए.
To please Him in all respects.
ताकि सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको.
Bearing fruit in every good work.
और सब भले कामों में फलवंत होकर के.
How we walk pleases God.
हम कैसे चलते हैं अपने जीवन में उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है या नहीं प्रसन्न होता है.
It doesn't earn his love.
उसके प्रेम को हम नहीं कमाते हैं उसके द्वारा.
But we receive his good pleasure.
लेकिन हम उसके अच्छे आनंद को प्राप्त करते हैं.
1 Thessalonians.
पहला थिस्सलुनीकियों.
Chapter 4.
चौथा अध्याय.
Look at verse 1 and 2.
देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा पद को देख लीजिए.
Read that for us.
पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय का पहला दूसरा पद. अंत में हे भाइयों, हम तुमसे प्रभु यीशु मसीह में निवेदन करते और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है, जैसे कि तुम सचमुच में चलते भी हो, वैसे ही और भी अधिक बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं दी हैं.
Now notice several things.
यहाँ पे कई चीजों पर ध्यान दीजिए आप.
The Christians walk.
और मसीही लोग चलते हैं.
That talks about his manner of life.
ये उसके चाल चलन के बारे में बात करता है.
There is a certain way it is necessary for us to walk.
और एक निश्चित तरीका है जिसके अनुसार से मसीह को अपने जीवन में चलना है.
When we walk a certain way, it pleases God.
और जब हम एक विशेष तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है हमसे.
Notice verse 2.
और दूसरे पद को ध्यान दीजिए.
What is the way we are to walk?
और दूसरे पद के अनुसार किस रास्ते में हमको चलना है.
According to commandment.
और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है.
Paul said, I gave you commandments.
पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें प्रभु की आज्ञाएं दी
हैं. I didn't give you suggestions.
मैंने तुम्हें केवल सुझाव ही नहीं दिए हैं.
I gave you commandments.
मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी जिसके साथ तुम्हें चलना है.
This is necessary.
ये आवश्यक है.
It is to guide your walk.
ये तुम्हारे मार्ग को दिशा निर्देशित करती है.
If you walk according to commandments, you please God.
और जब तुम आज्ञाओं के अनुसार चलते हो तुम परमेश्वर को प्रसन्न करते हो.
What is our goal?
हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है?
To please God.
परमेश्वर को प्रसन्न करना.
How do we walk?
हम कैसे चलते हैं?
According to commandment.
उसकी आज्ञाओं के अनुसार.
What is our motivation?
हमारा प्रेरणा क्या है?
The love of God.
परमेश्वर का प्रेम.
What is our power?
हमारी सामर्थ्य क्या है?
The Holy Spirit.
पवित्र आत्मा.
How do we take the first step?
हम पहला कदम कैसे लेते हैं?
By faith.
विश्वास के द्वारा.
Where does the power come from?
कहां से आती है ये सामर्थ्य?
Jesus Christ.
यीशु मसीह.
One final verse.
एक अंतिम पद.
First John.
पहला योना.
Chapter
3. तीसरा अध्याय.
Verse 21.
उसका 21 पद.
Brethren, if our heart does not condemn us, we have confidence with God.
प्रभु यदि हमारे हृदय में दोषी न ठहराए तो परमेश्वर के सम्मुख हमें साहस होता है.
If we keep a clean conscience and our heart doesn't condemn us, we have confidence.
यदि हमारा हृदय हमें दोषी नहीं ठहराता है तो हमें साहस होता है.
We keep a good conscience.
यदि हम अच्छा विवेक रखेंगे.
And our assurance is increased.
तो हमारे जो निश्चयता है वो बढ़ती चली आएगी.
Verse 22, whatever we ask, we receive from Him.
22 पद कहते हैं जो कुछ हम मांगते हैं उसे हम पाते हैं.
Why?
क्यों?
Because we keep His commandments.
क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं.
And we do the things pleasing in His sight.
क्योंकि हम वही कार्य करते हैं जो उसकी निगाहों में दृष्टि में प्रिय है, प्रसन्न है उसको.
If we obey God's commandments,
यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे,
we're pleasing to God.
तो हम परमेश्वर को प्रिय जानेंगे.
Our heart doesn't condemn us.
और हमारा हृदय विवेक हमें दोषी नहीं ठहराएगा.
We have assurance before God.
परमेश्वर के सामने हमें आश्वासन होगा.
And we have confidence in prayer.
और हमारे प्रार्थनाओं में हमें बल मिलेगा.
So you see, all of these things make up true gospel obedience.
तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें ही मिल करके सुसमाचारी आज्ञाकारिता को प्रस्तुत कर रही हैं.
The antinomian says this.
जो गैर व्यवस्थावादी व्यक्ति है वो ये कहता है.
Well, you've got to wait for the spirit to move you.
वो कहता है कि तुम्हें रुकना है आत्मा के लिए, आत्मा तुम्हें चलाएगा तभी तुम कुछ करना.
If you're not motivated by the love of God, you should not do it.
क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरित नहीं हो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए कुछ भी कार्य.
You don't look to the commandments of God, you just look to Jesus.
तुम परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर नहीं देखते हो, केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो.
And you don't worry about pleasing God, He's already pleased with you.
तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने की चिंता मत करो, वो तो तुमसे पहले ही प्रसन्न है, तुमको प्रिय जानता है.
But that's not what the Bible teaches.
लेकिन परमेश्वर वचन तो हमको ये बात नहीं सिखाता है.
Any questions?
कोई प्रश्न है बाप के पास?
Hope you already know this.
मेरी आशा है कि आप इसको पहले से ही जानते होंगे.
But many believers in your churches do not.
लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग आपकी कलीसिया में इन बातों को नहीं जानते.
Some people think this way.
कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं बातों को.
If God's not pleased with me, He does not love me.
कि अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो हमसे प्रेम नहीं करता है.
And they have no assurance.
और उनके पास कोई आश्वासन नहीं है.
Other people think this way.
और दूसरे लोग ये सोचते हैं इस बारे में.
Well, if God loves me, He's always pleased with me.
कि अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहता है.
Your responsibility is to preach the truth properly.
आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सत्य को सही तरीके से सिखाएं.
To wake up the unruly man from his false false assurance.
और जो व्यक्ति जो ठीक ठाक नहीं चल रहा है और अपनी झूठी आश्वासन में जीवन व्यतीत कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको उसमें से जगाएं.
And to encourage the weak believer in God's love.
और जो कमजोर विश्वासी है, भाई है, उसको परमेश्वर के प्रेम में उसको उत्साहित करें.
And we avoid both extremes.
और हम वे दोनों चरम स्थितियां हैं, उनको उनसे बच के रहेंगे.
What is the Christian's relationship to the law?
एक मसीही का क्या का व्यवस्था से क्या संबंध है?
It directs the path of his obedience.
व्यवस्था मसीही के मार्ग को आज्ञाकारिता की ओर लेकर के जाता है.
It doesn't provide the power.
वो उसको सामर्थ्य नहीं प्रदान करता.
That comes by the Holy Spirit.
क्योंकि वो सामर्थ्य सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा आती है.
It doesn't provide the primary motivation.
और वो उसको प्राथमिक प्रेरणा भी नहीं प्रदान करती है.
That is by the love and grace of God.
क्योंकि वो तो प्राथमिक प्रेरणा परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आता है.
It doesn't come from your own effort. I mean your own power.
वो हमारे स्वयं के सामर्थ्य और स्वयं के प्रयास के द्वारा नहीं आती है.
From union with Christ.
लेकिन ये सुसमाचारी आज्ञाकारिता यीशु मसीह से एकता मिलन और उसके साथ हो जाने के द्वारा
आती है. That's why we must pray.
इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए.
That's why we must live in the Bible.
इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में जीवन व्यतीत करना
चाहिए. That's why we must have communion with God.
इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ संगति में समय व्यतीत करना चाहिए.
Jesus is in heaven.
यीशु मसीह स्वर्ग में है.
You are on earth.
आप इस पृथ्वी पर हैं.
How do we get his power down to us?
हमें कैसे उसकी सामर्थ्य यहाँ पे मिलेगी?
By the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा.
How does that power come?
वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य कैसे हमारे पास आती है?
By the means of grace.
अनुग्रह के साधनों के द्वारा.
It's like the pipe that the water runs through.
ये एक ऐसे पाइप के समान है जिसमें से पानी होकर के जाता है.
The water is the Spirit.
जो पानी है वो तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा है.
The means of grace is like the pipe.
और जो अनुग्रह के साधन है वो तो एक पाइप के समान है.
So every day,
इसलिए प्रतिदिन
you go to the pipe,
आप उस पाइप के पास जाएंगे.
Open your mouth,
अपना मुंह खोलेंगे.
Pray,
प्रार्थना करेंगे,
रीड,
पढ़ेंगे इसको,
एंड गॉड्स पावर विल बिगिन टू फ्लो,
और परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर भरने लगेगी।
समटाइम्स जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स,
हो सकते कभी कभी केवल कुछ बूंदे,
समटाइम्स यू स्क्वीज इट एंड नथिंग कम्स आउट,
कभी कभी आप उसको निचोड़ेंगे फिर भी कुछ नहीं निकल रहा उसमें से।
Would you come to the pipe again and again?
लेकिन आप उस पाइप के पास बार बार आएंगे, बार बार आएंगे।
Not by faith, not by sight, not by feeling.
अपने भावनाओं के आधार पर नहीं, अपनी आंखों के आधार पर नहीं, लेकिन विश्वास के आधार पर।
Would you come by faith?
अब बार बार विश्वास में होकर के आएंगे।
Again and again.
अगेन, फिर से।
God will give you strength.
और फिर परमेश्वर आपको सामर्थ देगा।
To walk according to His commandments.
और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन चलाने के लिए।
And please God.
और उसको प्रसन्न करने के लिए।
That's true gospel obedience.
ये है वास्तविक सच्ची सुसमाचार पे आधारित आज्ञाकारिता।
That's what I'm trying to do.
यही चीज मैं करने का प्रयास कर रहा हूं।
And that is what you must do.
और यही चीज आपको भी करनी चाहिए।
Well, let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें।